हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 से स्टार्ट करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेनया कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममालम प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापरः वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबर तरुणबिंबफला धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् हरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जेहवे बिबस्व मृतुमेत देव गोविंद दामो धर्माधवीति वरहापीरं नटवरवपुकर्णियो कर्णिकारं बिभ्रात्वासः कनकपिशं वैजयन्तीं च माल्यं रन्ध्रान्वेणुम् अधरसुधया पूर्णयोगोपवृन्दे वृन्दारण्यम् स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति अहो बकियं स्तनकालकूटं जिंघासयापा ययदप्यसात्वी लीभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेन। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलखिशो जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथ राशि श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 4, जिसका शीर्षक है विदुर का मैत्रेय के पास जाना। तो आज हम वहां से प्रारंभ करते हैं जहां से कल हमने छोड़ा था, कि भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाईं जांघ पर रखे एक छोटे से बरगद के वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे। और यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू सुपास त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुँचे। मैत्रेय मुनि में भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। और उद्धव जी कहते हैं, मुझे विश्राम देने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से मुझसे इस प्रकार बोले। और आज भगवान उद्धव जी से अत्यंत ही सुंदर और मनोहर शब्दों में उनको अपना अंतिम संदेश देंगे। मेरे साथ साथ श्री भगवान के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। श्री भगवानुवाच वेदाहमंतर मनसीप्सितं ते ददामि यत्तद्दुरवापमन्ये सत्रे पुरावेश्वश्रीजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसु त्वयिष्ठ वेदाहमन्तर् मनसीप्सितं ते ददामि यत्तद्दुरवापमन्ये सत्रे पुरावेश्वसेजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसु त्वयिष्ट। श्री भगवान उवाच अर्थात श्री भगवान ने कहा, वेदाहम अर्थात मैं जानता हूँ, भगवान सब जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के विषय में जानते हैं। इसे भगवान कहते हैं वेदाहम अंतर, अंतर मतलब भीतर, मनसी यानी मन, मन में इप्सितम इच्छित्ते तुम्हारे, तुम्हारे मन में जो इच्छा है उसको जानता हूँ। ददामि यत्तद् दुरवापमन्ये, ददामि देता हूँ, यत् जो है वह, दुरवापम प्राप्त करना कर पाना अतीव कठिन, अन्ये अन्यों द्वारा। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में बैठी हुई बात को जानता हूँ और तुम्हारे हृदय में जो है उसे भी जान रहा हूँ, और वो वस्तु तुम्हें दे दूंगा जो प्राप्त करना बहुत कठिन है। सत्रे पुरा विश्व श्रीजाम वसूनाम, सत्रे अर्थात यज्ञ में, पुरा प्राचीन काल में, विश्व सृजाम इस सृष्टि का सृजन करने वालों के, वसु नाम वसुओं का, मत्सिद्धिकामेन वसु त्वयिष्ठ, मत्सिद्धिकामेन मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा से, वसु हे वसु त्वय अर्थात तुम्हारे द्वारा इष्ट जीवन का चरम लक्ष्य। भगवान उद्धव से कहते हैं, हे वसु मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी, जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त करना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूँ। यह भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र उद्धव से कहते हैं, वेदा हम अंतर मनसी, तुम्हारे हृदय की जो इच्छा है उसको मैं जानता हूँ, और वो इच्छा कब की है? सत्रे बुरा विश्व सृजाम वसुनम, जब बहुत बहुत पहले काल में सारे वसुओं ने, देवताओं ने यज्ञ किए थे, उस यज्ञ के समय तुम्हारे मन में इच्छा आई थी कि तुम मेरी संगति प्राप्त करो, और मेरी संगति प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन जो शुद्ध हृदय से ऐसी इच्छा करता है, मैं उसकी इच्छा को पूर्ण करता हूँ, तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूँगा, क्योंकि तुमने बहुत ही प्योरिटी के साथ, बहुत ही शुद्ध हृदय के साथ ये कामना की थी, और अब मैं तुम्हें वो प्रदान करूँगा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, उद्धव भगवान के नित्य संगियों में से एक है, और उद्धव का स्वांश प्राचीन काल में 8 वसुओं में से एक था। 8 वसु तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने, जो विश्व के कर्मों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायित हैं, प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया था। उस समय उद्धव के एक अंश ने एक वसु के रूप में भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। भगवान इसे जानते थे, क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा या पराचेतना के रूप में उपस्थित रहते हैं। हर एक के हृदय में पराचेतना का प्रतिनिधित्व होता है, जो हर जीव की आंशिक चेतना को स्मृत प्रदान करता है। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है, किंतु पराचेतना उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान के विगत अनुशीलन के अनुसार किस तरह कर्म किया जाए। बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ शिला प्रभुपाद जी पराचेतना या परमात्मा जो हृदय में बैठे हुए हैं, उनके विषय में बता रहे हैं कि जीव तो दूसरा जन्म लेता है तो भूल जाता है कि पिछले जन्म में मैंने क्या इच्छा की थी, मैंने किसके साथ कैसा व्यवहार किया था, लेकिन पराचेतना के स्वरूप में भगवान जो है वो हृदय में बैठे होते हैं, और क्योंकि उन्हें सब पता होता है तो वो जीव को स्मृति देते हैं, और हर जीव की आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करते हैं। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है, किंतु पराचेतना उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान के विगत अनुशीलन के अनुसार किस तरह से कर्म किया जाए। अब देखो, कभी कभी हम लोगों को पता नहीं होता है, पिछले जन्म का तो हमें पता नहीं है, फिर भी कुछ लोगों के साथ हम कितना प्रेम से मिलते हैं, इच्छा होती है कि उनका आदर किया जाए, उनसे प्रेम किया जाए, और कुछ लोगों को पता नहीं देख के क्यों हृदय में ऐसा भाव आता है कि ये पसंद नहीं लगते, तो या फिर किसी के ऊपर उपकार करने की इच्छा होती है। तो ये सब हमारे विगत जन्मों के कर्मों के अनुसार होता है। किसी से प्रेम करने की इच्छा होती है, किसी से बात करने का की इच्छा ही नहीं होती है, और यहाँ पर भगवान के लिए यदि हमारे हृदय में कोई इच्छा होती है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, मैं भगवान की संगति करना चाहता हूँ, मैं भगवान के लिए कुछ कार्य करना चाहता हूँ, तो ये इच्छा यदि प्रबल होती है तो दूसरे जन्म में भगवान हमें उसका अवसर प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव पचाम्यहम्। इसी बात को समझाते हुए आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में इस तथ्य की पुष्टि अनेक प्रकार से हुई है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। 4.11 तथा सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। 15.15 हर जीव को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति भगवान द्वारा की जाती है। हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर करती है। इस नियम को मोरे मन कछु और है कर्ता के मन और द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्राचीन काल में जब देवताओं तथा वसुओं ने यज्ञ किया तो एक वसु के रूप में उद्धव ने भगवान की संगति करने की इच्छा प्रकट की थी, जो ज्ञानियों या सकाम कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे लोगों को भगवान का संगी बनने के विषय में कोई व्यावहारिक बातें ज्ञात नहीं होती, केवल शुद्ध भक्त भगवत कृपा से ही जान सकते हैं कि भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी तो महर्षि मैत्रेय भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्ता से अंत में अवगत हुए हो गए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान उद्धव से ये कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारी प्रबल इच्छा थी कि तुम मेरी संगति प्राप्त करो, तो इसीलिए मैंने इस जन्म में तुमको वो वरदान प्रदान किया। वैसे तो कर्मी और ज्ञानियों के लिए मेरी संगति प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनको महत्ता ही नहीं पता। कर्मी और ज्ञानी केवल फलावर कार्य करते हैं या भगवान के अंदर लीन होने की इच्छा करते हैं, लेकिन भगवान की संगति तो केवल शुद्ध भक्त ही प्राप्त करते हैं, वो भी जब उन्हें भगवत कृपा प्राप्त होती है। तो मैत्रेय मुनि जो है वो उनको पहले भगवान की संगति की महत्ता के विषय में पता नहीं था, लेकिन जैसे ही भगवान ने बोलना प्रारंभ किया तो उनको भी लगा कि कितना महत्वपूर्ण है। आगे भगवान कहते आगे कहते हैं, स ईश साधो चरमो भवाना आसादितस्ते मदानुग्रहोयत् यन्मां नृलोकान् रह उसृजन्तम् दृष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या। स एष साधो चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदानुग्रहोऽव्यत् यन्मां नृलोकान् रह उसृजन्तम् दृष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या। शब्दात् स एष साधो, स मन वह, एष मन उनका, साधो हे साधो, चरमो भवानाम, चरम भवानाम अर्थात तुम्हारे सारे अवतारों यानी वसु रूप में से, आसादितस्ते मदानुग्रहोयत् आसादित अर्थात अब प्राप्त हुआ ते तुम्हारे पर, मद अनुग्रह मेरे अनुग्रह से, यन्माम निलोकान रह उसृजन् यन्माम यन्मना जिस रूप में यत् यन मतलब क्योंकि माम मना मुझको निर्लोके बद्ध जीवों के लोक में, रह एकांत में, उत्सृजंतम अर्थात त्यागते हुए, दृष्टिया देखने से, ददृश्यवान जो तुम देख चुके हो, विशद अनुवृत्त्या यानी अविचलित भक्ति से कि तुम आज जो तुम्हें दिखने को मिल रहा है, मेरी संगति प्राप्त हुई है, ये एकांत स्थान में एक स्थान में मेरे साथ बैठे हुए हो, तो ये बहुत बड़ा तुम्हारे लिए वरदान है। और इससे क्या है, चरमो भवानाम, ये तुम्हारे लिए चरम वरदान है और ये तुम्हारे जीवन के ऊपर मेरी चरम कृपा है। क्योंकि जब भगवान की संगति प्राप्त होती है, उससे बढ़कर और एक जीव को कुछ भी प्राप्त बढ़कर और उसके लिए कुछ प्राप्त करने के लिए बचा नहीं, कृष्ण की संगति प्राप्त हुई है उसको, और वो भी एकांत में अंतिम समय में। तो उसके लिए उद्धव जी को भगवान कहते हैं, हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, कि अभी जो तुमको इतने पहले भी जन्म हो चुके हैं, पहले वसु बने हो और भी जन्म, लेकिन अभी जो तुम्हारा जन्म है वो अंतिम है और सर्वपरि है, मतलब इससे बढ़कर और कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है, भगवान की चरम कृपा, भगवान का सानिध्य, भगवान की संगति। अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। और वो कैसे प्राप्त हुआ इसको, उद्धव जी को ये पद कैसे प्राप्त हुआ, उसके लिए भगवान कहते हैं, दृष्ट्या यदृष्वान विशदानुवृत्त्या, कि क्योंकि अविचलित, विशद अनुवृत्त्या मतलब अविचलित भक्ति, कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के प्रति ना उनको कोई भक्ति थी और ना ही कोई विश्वास, केवल कृष्ण के चरणों में अनिष्ट एक अनिष्ट भक्ति थी। तो इसीलिए वे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, मुक्त अवस्था को प्राप्त एक पूर्ण परिपूर्ण जीव आत्मा द्वारा जितना भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उससे जब वह पूर्णतया अवगत हो लेता है तो उसे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है। मतलब कि एक जीव आत्मा जितना अधिक मतलब भगवान के विषय में पूर्णतया जब अवगत हो जाता है और उसकी भक्ति उसके भगवान के प्रति अविचलित हो जाती है, जब भौतिक आसक्ति पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाती है, तो उसे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है, तब वो भगवत धाम में चली जाती है जहाँ वैकुंठ लोक विद्यमान है। भगवान एकांत में इस ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि से अंतर ध्यान होने के लिए बैठे हुए थे और ऐसे समय में भी उनका दर्शन करने और इस तरह वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए उनकी अनुमति पाने के लिए उद्धव भाग्यशाली थे। भगवान सदैव सर्वत्र रहते हैं और उनका प्राकट्य तथा अंतर्धान होना किसी विशेष ब्रह्मांड के निवासियों का अनुभव मात्र है। वे सूर्य हैं, सूर्य आकाश में प्रकट या अंतर्ध्यान नहीं होता, यह तो लोगों का अनुभव है कि सूर्य प्रातःकाल उदय होता है और सायंकाल अस्त हो जाता है। भगवान एक ही समय वैकुंठ में तथा वैकुंठ के भीतर तथा बाहर सर्वत्र होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी पुनः पुनः भगवान को सूर्य से भगवान की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस तरह भगवान सूर्य सदैव रहता है हमारे सामने, कभी दृश्य होता है तो कभी अदृश्य, उसी तरह से भगवान भी सदैव विद्यमान है, वैकुंठ और वैकुंठ के भीतर और बाहर सर्वत्र रहते हैं, बस हमारी दृष्टि में कभी वो प्रकट होते हैं तो कभी अप्रकट होते हैं। और इस समय क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत से अप्रकट होने की तैयारी कर रहे थे और उस समय उद्धव भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर रहे थे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है। आगे भगवान कहते हैं, पूरा मया प्रोक्तम जायनाभि पद्मे निषणाय मामा दिसर्गे ज्ञानम परम मन महिमावभावा बासम यत्सूरयो भागवतम वदन्ति पुरा मया प्रोक्तम जायनाभि पद्मे निषणाय मामा दिसर्गे ज्ञानम परम मन महिमावभासम यत्सूरयो भागवतम वदन्ति पुरा मया प्रोक्तम अजायनाभ्ये। पुरा मना प्राचीन काल में, मया मना मेरे द्वारा, प्रोक्तम मना कहा गया, अजाय ब्रह्मा से, नाभ्ये नाभि से बाहर, पद्मे यानी कमल पर, ब्रह्मा जी जो कि भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए कमल पर विराजमान है, उनको पुरा यानी बहुत ही पहले भगवान ने उपदेश दिया, पद्मे पद्मे ने शरणाय मम दिसर्गे, पद्मे अर्थात स्थिन, मम अर्थात मेरा, आदि सर्गे सृष्टि के प्रारंभ में, ज्ञानम यानी ज्ञान, परम यानी परम, महत महिमा यानी मेरी दिव्य कीर्ति, अवभासम जो निर्मल बतानी है, यत सूरयो भागवतम वदन, यत मना जिसे सूरयो महान विद्वान मुनि भागवत श्रीमद् भागवतम वदन्ति कहते हैं। तो अब भगवान जाने से पहले उद्धव जी को बता रहे हैं कि हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवतम कहते हैं। यत सूरयो भागवतम वदन्ति, वो मेरी महिमा जो मैंने ब्रह्मा जी से बताई थी जब ब्रह्मा जी मेरी नाभि से उत्पन्न हुए थे, तो वो श्रीमद् भागवतम का जो ग्रंथ है उसके विषय में भगवान अब उद्धव जी को बता रहे हैं। अंतिम समय में जैसे भगवान उद्धव जो है ना वो नहीं चाहते हैं कि भगवान उसको छोड़ के जाएं, तो उद्धव को भगवान बता रहे हैं कि मुझ में और भागवतम में कोई अंतर नहीं है, और मेरे उपरांत धर्म की सुरक्षा करने के लिए भागवतम है, और ये वो भागवतम है जो मैंने ब्रह्मा जी को प्रथम बार सुनाया था। अनुवाद देखिए, हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवतम कहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बोलते, परमात्मा विषयक जो व्याख्या ब्रह्मा से कही गई थी तथा जो इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंध में पहले ही बताई गई है, उसका और अधिक स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा के को बतलाया गया श्रीमद् भागवतम का संक्षिप्त रूप मेरे व्यष्टित्व स्वरूप की व्याख्या के लिए था। द्वितीय स्कंध में 49 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या नहीं निरस्त हो जाती है, यही निरस्त हो जाती है। यानी कि ये जो भगवान बता रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है वो मेरे यानी भगवान के विषय में बताने के लिए, तो इसमें कोई निराकार की बात नहीं है। द्वितीय स्कंध के 49 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यहीं निरस्त की जाती है। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी ने भी व्याख्या की है कि भगवान का वही संक्षिप्त रूप भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था और वह निर्विशेष तोषण के लिए कदापि नहीं था। तो ये साफ साफ भगवान बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में या फिर वेदों में या ब्रह्मा जी को जो ज्ञान बताया गया था वो सब भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप और महिमाओं के विषय में बताया गया है, कोई निर्विशेष स्वरूप के विषय में नहीं बताया गया है। ये कितना बड़ा सौभाग्य है उद्धव जी का कि भगवान अंतिम समय में इतनी घनिष्ठता के साथ उद्धव के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, और उद्धव को जब ये बता रहे थे तो उनके अंदर कैसा भाव उत्पन्न हो रहा था, उनको कैसा लग रहा था, किस तरह से उनको लग रहा था कि कृष्ण मुझसे कितना प्रेम कर रहे हैं, मुझे कितना स्नेह के साथ सब अपनी बात बता रहे हैं, मेरे पुराने जन्म के विषय में बता रहे हैं, अपने विषय में बता रहे हैं। तो उनके नेत्रों से झरझर अश्रुधाराएं बह रही हैं, उनकी वाणी रुद्ध हो गई और उनके पूरे शरीर में रोमांच उठा। उद्धव जी कहते हैं, इत्यादृक्तो परमस्य पुंस प्रतीक्षणानु ग्रहभाजनोहं स्नेहोत्थरो मा स्खलिताक्षणस्तं मुञ्चन् शुचः प्राञ्जलिराभभाषे इत्यादृतोक्त परमस्य पुंस प्रतीक्षणानु ग्रहभाजनोऽहं स्नेहोत्थरो मा स्खलिताक्षरस्तम् मुञ्च शुचः प्राञ्जलिराभवासे इत्यादृक्तो इति अर्थात इस प्रकार आदृत अनुग्रह किए गए उक्त संबोधित परमस्य पुंसा परमस्य अर्थात परम का पुंस यानी भगवान भगवान इतना स्नेह के साथ मुझे जब बात कर रहे थे प्रतीक्षण प्रतीक्षण यानी हरिक्षण अनुग्रह भाजन कृपा पात्र में अहम यानी में स्नेह अर्थात स्नेह उत्थ विस्फोट उनके इस संबोधन से रोमा अर्थात शरीर की रोएं स्खलित शिथिल हो रही थी और अक्षरा यानी आँखों से तम यानी उसको मुंचन यानी पहुँच कर शुचह आंसू प्रांजलि आबभाषे प्रांजलि अर्थात हाथ जोड़कर बभाषे अर्थात मैंने उनसे कहा उद्धव ने कहा हे विदुर जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतीक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेहपूर्वक संबोधित किया जा रहा था तो मेरी वाणी रोककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए अपने आंसू पोंछ कर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला और उद्धव जी ने भगवान से क्या कहा अत्यंत ही सुंदर शब्द हैं उद्धव कहते हैं कौन्मीषति पाद सरो जभाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपिह तथापि नाहं प्रविणोमि भूमन् भवत् पदाम्बोजनीशे वणोत्सुका कौन्मीषते पादसरो जभाजां सुदुर्लभोर्थेषु चतुष्वपिह तथापि नाहं प्रविणोमि भूमन् भवत् प्रदाम्बोजनीशे वणोत्सुक कौन ईशा को मना का हे प्रभु ईशा यानी हे प्रभु ते यानी आपके पाद सरोज भाजाम आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के जो आपके चरण कमलों की दिव्य भक्ति करते हैं सुदुर्लभ हो प्राप्त कर पाना अतीव कठिन है अर्थेषु विषय में चतुर्षु चार पुरुषार्थों के अपि बावजूद मतलब जो आपके चरण कमलों की भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें चार पुरुषार्थों में कुछ भी प्राप्त करना उनके लिए दुर्लभ नहीं है अपि उसके बावजूद भी यह इस जगत में तथापि न इस जगत में नहीं है फिर भी नहीं है फिर भी मैं आगे कहते हैं अहम यानी मैं फिर भी ये चार पुरुषार्थ वगैरह की इच्छा नहीं करता ने तथापि नाहम प्रविणोमि भूमन प्रविणोमि यानी वरीयता प्रदान करता हूँ यानी मैं फिर भी प्रायोरिटी किसको देता हूँ भूमन हे महात्मन भवत पदाम्बोजनेशे वणोत्सुक भवत अर्थात आपके पदाम्बोज चरण कमल निषेवण उत्सुक अर्थात सेवा करने के लिए उत्सुक हूँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बस आपके चरण कमलों की सेवा करने के लिए उत्सुक हूँ अनुवाद हे प्रभु जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। किंतु हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेष्ठकर माना है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग वैकुंठ लोक में भगवान के सानिध्य में हैं, वे भगवान के सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं और भगवान विष्णु जैसे ही प्रतीत होते हैं। ऐसी मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो पांच प्रकार की मुक्तियों में से एक है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करते। जो ब्रह्म ज्योति में तदात्मय है, भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपितु धर्म अर्थ अथवा काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उद्धव जैसे भक्त को ऐसी समस्त सुविधाएं स्वीकार्य नहीं है। शुद्ध भक्त एकमात्र भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, वह अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करता। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ उद्धव अपने हृदय की बात भगवान से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि आपकी भक्ति में लगकर सारे प्रकार की मुक्ति प्राप्त करना भी संभव है। सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य और सायुज्य कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। चार पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त के भक्ति का मतलब क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त, कृष्ण के प्रेम के अतिरिक्त, कृष्ण के सानिध्य के अतिरिक्त और कोई भी इच्छा यदि हृदय में है तो भक्ति नहीं हो सकती, वो शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम। जिसके अंदर ना ज्ञान की मिश्रण हो, ना कर्म आदि कुछ भी नहीं, ना ही किसी फलावर वस्तु की, धर्म अर्थ काम मोक्ष यहाँ तक कि मुक्ति भी अभिलाषा जब तक हृदय में है तब तक वो नहीं प्राप्त हो सकता जिसे कृष्ण प्रेम कहते हैं। क्योंकि वो प्रेम अकेला रहता है, प्रेम राज करता है हृदय पर, और जब प्रेम हृदय के भीतर आ जाता है तो प्रत्येक वस्तु की इच्छा आकांक्षा समाप्त हो जाती है, तभी वो आता है। तो ये वस्तुओं की इच्छा ज्ञान अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। केवल कृष्ण की प्राप्ति के लिए जो अनुकूल है उसी को भक्ति कहा जाता है। तो उद्धव जी कहते हैं कि मेरे हृदय में आपके सानिध्य के अतिरिक्त, आपकी प्रेमा भक्ति, आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी मेरे लिए श्रेष्ठकर नहीं है। इसीलिए मैं हर जन्म में केवल उसी की याचना करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए एक प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को कर सकूँ। हरे कृष्ण।